मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 26 मार्च 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत भी करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर के लिए जिस विषय का मैं चुनाव करने जा रहा हूं, आपको पहले से ही मालूम है, आपको ध्यान होगा कि 23 मार्च के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं जनांकिकी पर बात कर रहा था और वह बात अधूरी रह गई थी। इस विषय को थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से समझाने में, एक्सप्लेन करने में वक्त लग गया था, तो अब उस अधूरी बात को मैं इस लेक्चर में पूरा करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपसे यहां विशेष रूप से कहना चाहूंगा। देखिए, हम लोग जनांकिकी पर बात कर रहे हैं, जनांकिकी का संबंध जनगणना से ही है। हम अब जनगणना के चरित्र पर बात करेंगे कि हमारे जनगणना का स्वरूप कैसा है। तो जब हम जनगणना के स्वरूप पर बात करेंगे तो यह स्वाभाविक है कि उसमें डेटा आएंगे, आंकड़े आएंगे, राइट। तो हो सकता है कि आंकड़ों का कुछ ऐसा मेला आपको दिखाई दे कि आप थोड़े से अंदर से विचलित होने लगे, दिमाग थोड़ा सा घूमने लगे कि यार ये भी आंकड़ा है, ये भी आंकड़ा है, ये भी आंकड़ा है, किसको याद रखें, किसको नहीं याद रखें। मैं यहां विशेष रूप से आपसे एक अर्ज करना चाहूंगा फ्रेंड्स, वो ये कि मैं इसके तहत जिन आंकड़ों का उपयोग कर रहा हूं, आप मान करके चलिए कि वे हमारे बेसिक आंकड़े हैं, बेसिक डेटा है। ये आपको जानने ही चाहिए और याद रखें कि ये जो डेटा है ये केवल इसी टॉपिक के लिए ही उपयोगी नहीं है, दूसरे बहुत से टॉपिक हैं जिनमें इनका उपयोग होगा, होता ही है। तो एक बार ये डेटा आप यदि समझ लेते हैं, नोट कर लेते हैं, तो फिर आप पाएंगे कि अपनी बातों को तथ्य तरीके से, तार्किक रूप से कहने में आपको कितनी मदद मिल रही है, आपकी एक्सप्लेनेशन पावर बढ़ जाएगी। हालांकि मेरी कोशिश है कि मैं केवल बहुत ही जो महत्वपूर्ण डेटा है वही इसमें लाऊं, फालतू के डेटा मैं भरने से वैसे भी मित्रों परहेज करता हूं। तो आप डेटा से बिल्कुल भी मत घबराइएगा। और मैं विशेष रूप से यह भी कहना चाहूंगा कि देखिए, कुछ ऐसे डेली ऑडियो लेक्चर्स होते हैं जो आपके लिए हमेशा काम आने वाले हो सकते हैं, तो आप इसके साथ ना, जैसे न्यूज़पेपर होता है ना कि हमने पढ़ा और उसको डाल दिया, पढ़ा और डाल दिया, एक दिन के बाद वो पुराना हो जाता है। आप डेली ऑडियो लेक्चर के साथ ऐसा करने से थोड़ा सा बचिए। जो भी आपको थोड़ा सा महत्वपूर्ण लगते हैं उन्हें आप अपने पास रख सकते हैं, बाद में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि डेटा को आधार बना करके आप इस डेली ऑडियो लेक्चर को भी उसी श्रेणी में रख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब मैं आपके सामने अपनी बात रखने की कोशिश करता हूं और मेरी कोशिश होगी कि ज्यादा सरल तरीके से, सहज तरीके से मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि भारत की जो जनांकिकी संरचना है वो बेसिकली एक पिछड़ी हुई संरचना है, राइट। तो जब हम पिछड़ी हुई संरचना कहते हैं तो उसका अर्थ क्या है, शायद अब जब मैं आगे बात करूंगा तो वह आपको खुद स्पष्ट होता चला जाएगा, राइट। फ्रेंड्स, एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत में जनसंख्या का आधिक्य है, एक्सेस पॉपुलेशन हमारे यहां, यह बात कही जाती है, राइट। चीन में हमसे भी ज्यादा पॉपुलेशन है, चीन में यह बात कभी कही जाती थी लेकिन अब वहां यह बात नहीं कही जा रही है। तो क्या हो गया, क्या वहां की जनसंख्या कम हो गई? नो, कम नहीं हुई है, जनसंख्या कम नहीं हुई है। हां, उसकी जो वृद्धि दर है वो जरूर स्थिर हो गई है। मतलब स्थिर क्या, मतलब अब उस पर कंट्रोल हो गया है और अब जो जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है तो वो मैनेजेबल है, मैनेजेबल है। भारत में हम उस स्थिति तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं। अब आप देखिए कि हम एक्सेस पॉपुलेशन क्यों कह रहे हैं। ये तो फ्रेंड एक तुलनात्मक अध्ययन होता है, जब तक आप उस चीजों की तुलना नहीं करेंगे तब तक आप किसी बहुत ही तार्किक परिणति तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे यहां जो जनसंख्या का आधिक्य है वो इस मायने में है कि हमारे यहां जो विश्व की आबादी है उसके कुल 17.5% लोग रह रहे हैं, 17.5 लोग, 100 में से 17.5 लोग हमारे यहां रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं। ठीक है, आप रहिए 17.5 की जगह क्या 27 लोग हो जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन बात कहां है, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम वहां है जब हम ये देखते हैं कि जो विश्व का जो ज्योग्राफिकल एरिया, जो भौगोलिक क्षेत्र है, उसका भारत में केवल 2.4% है। ये प्रॉब्लम है। लैंड एरिया तो हमारे पास 2.4% है और पॉपुलेशन है 17.5%। इसका नतीजा, इसका परिणाम क्या होगा? बट नेचुरल है कि उस थोड़े सी जमीन पर बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं। जमीन का मतलब केवल जमीन से ही नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेस से है। तो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, उन प्राकृतिक संसाधनों पर दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा दबाव है। चाइना में वो दबाव नहीं है, उतना दबाव नहीं है। अब आप देखिए कि इस दबाव को जस्टिफाई करने के लिए या तार्किक रूप से बताने के लिए आप क्या कहेंगे? हम फिर आते हैं दोस्तों डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर, जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व का मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, राइट? भारत में जो प्रति वर्ग किलोमीटर जो रहने वालों की संख्या है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए ठीक है, चाइना को देखिए। चाइना में जो जनसंख्या का घनत्व है वो है 144 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 144। आप देख रहे हैं भारत से के आधे से भी कितना कम है ये। तो स्वाभाविक है कि उनके यहां जनसंख्या का दबाव जमीन पर और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेस पर नहीं है जितना हमारे यहां है। इसका परिणाम क्या होगा मित्रों? नो डाउट कि इसका परिणाम गरीबी में आएगा, गरीबी में आएगा। दूसरी बात यह है कि हमारे यहां जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वह भी अभी काफी है। हालांकि शुरू की तुलना में उसमें काफी नियंत्रण हुआ है, लेकिन अभी भी हम उस स्थिति पर नहीं आए हैं कि अपनी जनसंख्या को स्थिर कर सके। चाइना लगभग लगभग उस स्थिति पर आ गया है। मतलब यूरोप वगैरह के तो कुछ देश हैं, बल्कि जापान वगैरह के कर लीजिए, वो न केवल स्थिर हो गए बल्कि कुछ देश तो ऐसे हैं जो घटती हुई जनसंख्या से चिंतित हैं कि उनकी जनसंख्या घट रही है। लेकिन ज्यादातर जो डेवलप्ड कंट्री हैं, एकदम स्थिर तो नहीं लेकिन स्थिर के आसपास वो आ चुके हैं। हमारे यहां जो जनसंख्या की वृद्धि दर है दोस्तों वो वार्षिक है 1.64। ये मैं 2011 के आंकड़े के हिसाब से बता रहा हूं, अब तो हम 2021 के बहुत करीब पहुंच रहे हैं, नए आंकड़े आ जाएंगे। 1.64% प्रति वर्ष। चाइना में ये 1% है। और इस जनसंख्या वृद्धि दर अगर यही होती रही तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है कि 2050 तक भारत की जो जनसंख्या है वो चीन से भी अधिक हो जाएगी। और ये इसी दर से अगर हमारी जनसंख्या में वृद्धि होती रही तो हमारी जनसंख्या 34 सालों में दुगनी हो जाएगी, 34 सालों में। जबकि चाइना के पॉपुलेशन को दुगना होने में 60 साल लगेंगे क्योंकि उसकी दर कम हो गई है, 1% हो गई है, हम 1.64% पर हैं। तो ऐसी स्थिति में हम बहुत जल्दी चाइना की पॉपुलेशन को पार कर जाएंगे और इसका मतलब यह हुआ कि जो नेचुरल रिसोर्सेस पर जो प्रेशर है फिर वो और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, राइट? इसीलिए हमारी जनसंख्या को पिछड़ी हुई जनांकीय चरित्र वाला माना जाता है। फ्रेंड्स यहां अब जनसंख्या में वृद्धि के क्या कारण है मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस में भी है और ये आपको जानना चाहिए, वो आप अलग से देख लीजिएगा या फिर हम लोग कभी उस पर बात करेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स वो है कि हमारे यहां की जो पॉपुलेशन है ज्यादातर पॉपुलेशन रूरल बेस्ड है, रूरल बेस्ड। 2011 के ही आंकड़े के आधार पर हम लें अभी, खासकर देखिए वही हमारे पास ऑथेंटिक डेटा है, तो 68.8% पॉपुलेशन हमारी गांव में रह रही है, 68.8%, और रिमेनिंग जो 31.2% है वो कह लीजिए शहरी क्षेत्रों में रह रही है, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि शहरी और गांव का जनांकिकी के चरित्र से क्या लेना देना है? वो लेना देना है मित्रों वो इस तरीके से कि गांव की जो पॉपुलेशन होती है प्रोफेशन के रूप में वो क्या करती है? प्रोफेशन के रूप में वो ज्यादातर खेती पर निर्भर होती है, उस तरह के उसके उसको काम नहीं मिलते हैं। जबकि जो शहरी आबादी है वो सेकेंडरी या ये कह लीजिए कि द्वितीय या तृतीय क्षेत्रों में लगी होती है, यानी कि या तो वो उद्योगों में लगी होती है या वो सेवा क्षेत्र में लगी होती है। अर्थशास्त्र में आपने पढ़ा है कि जो सेवा क्षेत्र और जो उद्योग के क्षेत्र होते हैं उनमें आय अधिक होती है तो इनका जीवन स्तर बेहतर हो जाता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में आय भी कम होती है और दूसरी जो अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, कनेक्टिविटी की, वो उन्हें नहीं मिल पाती। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ के लोगों का, ज्यादातर लोगों का जो जीवन स्तर है वह जीवन स्तर नीचे है, निम्न है, क्योंकि वो गांव में रह रहे हैं और उस तरीके से उनकी आय नहीं बढ़ पा रही है। इसलिए फिर ये कहा जाता है कि हमारी जो चूंकि जनांकिकी का चरित्र ऐसा है कि उन तक विकास को पहुंचा पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए दोस्तों जो यूएनओ वगैरह है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बीच में ये विचार चल रहा है कि जो पिछड़े हुए देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको ऐसा करना चाहिए कि अपने गांव की पॉपुलेशन को शहर में शिफ्ट करना चाहिए, गांव को खाली करना चाहिए, कम से कम गांव हो, मतलब बिखरी हुई जो आबादी है उसको जब संग्रहित करते जाएं, फिर वहां क्या है कि सुविधाएं पहुंचाना आसान है। जैसे मान लीजिए कि कोई गांव है वहां 300 लोग रह रहे हैं, वहां से 5 किलोमीटर पर गांव है वहां 200 लोग रह रहे हैं। अब उन इस तरह के गांव अगर बिखरे हुए हैं तो हम सुविधाएं नहीं पहुंचा पाते, लेकिन अगर इन्हीं सबको एक जगह पर इकट्ठा करके 5,000 लोगों की पॉपुलेशन कर दी जाए तो एक कस्बा बन जाएगा। तो वहां आप स्कूल खोल देंगे, हॉस्पिटल खोल देंगे, दूसरी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे। तो यूएनओ में एक थॉट ये भी चल रहा है और कुछ देश इस पर काम कर भी रहे हैं। मित्रों, फिर हम लिटरेसी पर आते हैं। देखिए कि हमारे यहां जो लिटरेसी है अभी वो 73% है लिटरेसी। या आपको ये भी डेटा मालूम होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन जब हम आजाद हुए थे, आजाद 47 में हुए, आजादी के बाद पहली जनगणना 51 में हुई, 51 में हमारी जो लिटरेसी रेट थी वो 18.33% थी, 18.33%। तो अब हम कम से कम 73% तो पहुंचे हुए हैं। इसमें पुरुषों की ठीक ठाक है, लगभग 80.9% है, मतलब 81% के आसपास है। स्त्रियों का थोड़ा सा अभी कम है, 64.6% के आसपास है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो लिटरेसी भी हम 100% लिटरेसी में अभी नहीं पहुंचे हैं। लिटरेसी ये माना जाता है कि आप 90% तक भी पहुंच जाते हैं, लिटरेसी रेट तो ठीक ठाक है। अशिक्षा का देखे प्रभाव सीधे सीधे दूसरी चीजों पर पड़ता है, स्वास्थ्य पर पड़ता है, प्रोफेशन पर पड़ता है, पॉलिटिकल सिस्टम पर पड़ता है। जैसे जैसे लोग शिक्षित होते जाएंगे, अवेयर होते जाएंगे, तो उस तरीके से फिर उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठता चला जाएगा, वो स्किल्ड होते चले जाएंगे, है ना। तो ये नेक्स्ट पॉइंट था फ्रेंड्स। अब हम लिंगानुपात को अगर देखें, जिसे हम सेक्स रेशियो कहते हैं, तो वो भी भारत का बहुत अच्छा नहीं है। आपको मालूम है कि हमारा जो राष्ट्रीय लिंगानुपात है अभी लेटेस्ट 2011 के आंकड़ों के अनुसार वो 1000 के पीछे 943 महिलाओं का है, 1000 के पीछे 943। और वो कन्या भ्रूण हत्या और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मूवमेंट चल रही है वो आपको मालूम है, इसीलिए हो रहा है कि हम किस तरह से अपने सेक्स रेशियो को संभालें। हालांकि सेक्स रेशियो के मामले में चाइना की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। जैसे चाइना में जो रेशियो है वो हमसे भी खराब है, 943। लेकिन दूसरे देशों में बेहतर है। जैसे अगर हम वर्ल्ड का डेटा ले तो वर्ल्ड में तो बहुत अच्छा है, 1000 से नाप तुलना की जाती है ना, तो 1000 पुरुष है तो महिलाओं की संख्या 1020 है, हमारे यहां 943 है। हमारे यहां भी कुछ राज्य बहुत अच्छी स्थिति में, जैसे केरल में 1084 है, बहुत अच्छी स्थिति में है। हरियाणा में सबसे कम है, 879 है। हाँ, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं और खासकर साउथ के जो स्टेट हैं, वहां जो लिंगानुपात है वो औसत से थोड़ा सा बेहतर है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा इसी के तहत, तो वो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की आबादी। इसकी चर्चा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो आबादी है, ये आबादी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़ी आबादी है, तो स्वाभाविक है कि वो भी हमारी जनसंख्या के एक चरित्र को व्यक्त करती है। और चूंकि इनका जो टोटल परसेंटेज है वो काफी है, 25% के आसपास है, तो आप 25% के पॉपुलेशन को कम नहीं मान सकते। अनुसूचित जाति और जनजाति को आप मिला दें तो, जैसे अनुसूचित जो जाति है जिसके हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उनकी पॉपुलेशन है टोटल की 16.6%, और जो शेड्यूल ट्राइब है उनकी जो आबादी है वो है 8.6%। अगर आप इनको दोनों को जोड़ देंगे तो लगभग 25% की जो आबादी है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की आबादी हो जाती है, जिसे आप यूं कह लीजिए कि लगभग लगभग देश की कुल आबादी का एक चौथाई भाग अभी भी पिछड़ा हुआ है, राइट? अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारी जो आबादी है उसका एक चरित्र इस तरीके का है कि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि हमारे सोशल स्ट्रक्चर में काम पर बहुत कम लोग लगे हुए हैं, बहुत कम लोग काम करते हैं और उन पर डिपेंडेंट ज्यादा लोग हैं, उन पर निर्भर ज्यादा लोग हैं। खासकर ज्वाइंट फैमिली में यही होता है, दो चार लोग कमा रहे हैं, बाकी लोग उन्हीं की कमाई से गुजारा कर रहे हैं। गांव में ये मजबूरी भी है क्योंकि हर समय उनको काम नहीं मिल पाता है। तो ये एक प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम कह लीजिए या कह लीजिए स्वरूप हमारे पॉपुलेशन का फ्रेंड्स है। फिर आप जानते हैं जिसे आप प्लस पॉइंट भी कह सकते हैं, वो ये दोस्तों कि हमारे यहाँ हमारी जनसंख्या में इतने सारे धर्म के लोग हैं, इतने सारे संप्रदाय के लोग हैं, इतने सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं। तो ये हमारी जो विविधता में एकता या एकता में विविधता को प्रमाणित करने वाली जनसंख्या विश्व की कह लीजिए कि ये बहुत ही अद्भुत जनसंख्या है इस मायने में, और इसकी ताकत भी है। ताकत की दृष्टि से फ्रेंड्स, इससे पहले के लेक्चर में इससे संबंधित जो था हम लोगों ने बात की थी कि जो एक बहुत बड़ी जो पावर है भारत की वो है कि यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मोर देन 50%, 50-55% जो हमारी पॉपुलेशन है वो यंग है। वो हमारे लिए एक डिविडेंड का काम करती है, लेकिन उसकी जो समस्याएं हैं, उसकी जो सीमाएं हैं, इसकी चर्चा हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो बहुत ही मूलभूत कुछ बातें थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम एक सामान्य सी तस्वीर तो आपके दिमाग में खासकर डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को लेकर के बन ही चुकी होगी। फ्रेंड्स, इस पर किताबों में टॉपिक्स हैं, आप इन्हें पढ़ें, समझने की कोशिश करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे तरीके से इस पर आप तैयारी भी करें। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।